जैसे कोई एक व्यक्ति है समुद्र के किनारे में पहुंचे जगन्नाथपुरी हो बंबई हो और समुद्र के किनारे खड़ा हो गए समुद्र की तरफ देखता है क्या देखेगा आदि अंतहीन उसे बड़ी बड़ी लहरें आ रही विशाल विशाल लहर आती हैं तट से टकराती हैं और फिर कुछ दूर जाकर के फिर लौट आती और फिर समुद्र में पहुंचती कब से ये लहरें आ रही हैं कब तक लहरें रहेंगी ये भी आदि है लहर क्यों आ रही है हम लोगों को पता है कि क्यों लहर आ रही है कुछ साइंटिफिक अथवा भौगोलिक कारण दिए गए हैं चंद्र के वजह से ऐसा हो किंतु सब जगह पानी है किंतु वो उस पानी में लहर क्यों नहीं आ रही क्यों लहर इसका भी कारण लोगों को नहीं समझ उन लोगों को शास्त्र में कहा गया है शंकर जी के पूर्वदेव के पास से लेते हैं और उसमें एक दिन विज्ञान जब थक जाएगा जब कोई भी कारण है उसका जब टिकेगा नहीं अंत में बातों करके इन सब कारणों को और अभी नहीं मरे अभी तो उत्थान चल रहा है अभी जवानी में है किसी को देखता नहीं देखते देखते सब उसका फेद हो जाएगा अंत में ये सब जो हमारे शास्त्र में दी गई है वहीं पर अंत में आ सकते हैं वैसे ही उद्धव जी प्रेम के समुद्र के किनारे पर मथुरा से उपस्थित हुए ब्रज का प्रेम अथाह अनंत अगार और बड़ी बड़ी लहरियों और लहरी क्या है अष्टशास्त्री भाव विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी इत्यादि ये सब बड़ी लहरें इसमें सात्विक की बड़ी ऊंची लहरें उठती हैं अनुभाव वाली कम उठती है संचारी और अष्टशास्त्रिक वाली बड़ी बड़ी ऊंची उठ रही है उद्धव जी देख रहे हैं और जिस भाग में श्रीमती राधिका जी है वहां पर यह लहर और ऊंची उत्तर उन तरंगों को देखा बहुत निकट से देखा उसका एक दो छींटा भी लग गया इनके विशेष करके तो भ्रमर को संबंध संबोधन करके जाता है भ्रमर को इसको भ्रमर गीत का बहुत निकट से देखा किंतु कोई चीज विचार न सके ये लहर इतनी क्यों उठ रही लहर किसलिए उठ रही पानी कब खौलता है जब गर्म होता है तब पानी खौलता है ऊपर से नहीं मालूम होता किंतु पानी अत्यंत अधिक हीट से गर्म से फिर की आग जल रही और उस आग से ये ताप से ये लहरें जिसको ताप अधिक है उसी के अंदर में हृदय में लहर ये उठ रही उधर जी पहले आए ब्रज में गोरुओं को देखा गोरुए बिना से तड़प बछड़े तड़प वहां की कोयल और पुकार नहीं करती पहले कुहू कुहू करती पहले कोयल बैन बैठी थी और इधर उधर नहीं देखती है बस आंखों से आंसू आ रहे वहां का मयूर अब पीड़ा नहीं करते हैं मयूर उल्लू को भी ऐसे देखते सब देख करके उद्धव जी कुछ समझ नहीं सके तो नंद बाबा के यहां गए रात भर उनके यहां रहे वहां पर जो हुआ वो 47वें अध्याय में 4247 में उसका वर्णन किया। नंद बाबा जी का प्रेम देखा बीसवीं तरह गए। इतना प्रेम भगवान के प्रति किसी का हो सकता है उनकी धारणा नहीं थी। मथुरा में कहीं नहीं देखा, विश्व में कहीं नहीं देखा, अपने से तुलना की। वो कहते हैं कि आप कृष्ण के बड़े प्यारे हैं, सबसे अधिक प्यारे। मैं तो यहां पर देखता हूं कि चुटकी में कहा मैं उड़ जाऊंगा। कभी कृष्ण के लिए मेरे मुझे रोना नहीं आया, और ये नंद बाबा चुटकी कटर कटर के लिए है, उस ब्रह्म के लिए जो इनके अंदर में भी है बाहर में भी है सर्वत है, और ये रो रहे हैं। नंद बाबा परम सौभाग्यवान है। ये कहा आपका लड़का विश्व ब्रह्मांड का अधिनायक पर ब्रह्म है ऐसा था, और उसके लिए इतना रोते हैं, रोई है। और ये क्या करें, तू अबूर बालक और मुझे तू सांत्वना दे रहा है, रोइये मत रोइये मत। कृष्ण परब्रह्म में पहले नहीं जानता था, मैं तो अपने छोटा सा नादान बालक समझता था, और तू कह रहा है ये परब्रह्म है तुम्हारा पुत्र, इसलिए उनके प्रति जो तुम्हारा ये भाव, इसलिए सौभाग्य मान। और देख रहे हो कि हमारा जैसा विश्व ब्रह्मांड में कोई दुर्भागा नहीं, विश्व ब्रह्मांड में बहुत से दुर्भागे हैं ये बात की, किंतु हमारे जैसा दुर्भागा और कोई नहीं। पर ब्रह्म आकर के हमारे पुत्र के रूप में जाना, और फिर उसको प्रेम से नहीं रख सका, और उसको फिर जाना पड़ा वो मतदम छोड़कर के प्रेम के भूखा हुआ लड़का, और हमें छोड़कर के और मैं मर नहीं गया। अभी कभी जीवित हुई कह सकते रोने लगे। उद्धव जी ने कहा कि हमने क्यों कहा ये तुम बड़े भाग सोला, किसी का लड़का घर से भाग करके चला जा, कोई कह जा रहे तू तो बड़ा सुभा, तो उसके लिए रो रहे। मैंने कहा हमने बहुत भाग छोड़ दिया, आज पहली बार मैं समझ रहा हूं मैंने कितनी बड़ी भारी विशाल गलती की। रोने लगे, संतना नहीं दे सकते। और काशी में जसोदा जी दूसरी दुपरिया हो गई, जब कृष्ण थे तो वो कैसी थी, आज वो दूसरी हो गई। बस अब आंखों में आंसू तक नहीं, ऐसी स्थिति, आंसू सब समाप्त हो गए हैं, और वो केवल बस आंख बंद करके जहां पर नंद बाबा से बातचीत हो रही वहां पर बातचीत सुन रही है। बस वो भी कान में जा रहे के लिए। उद्धव जी को यह साथ नहीं हुआ कि जरा मैया को शांत करना दे, मैया उनको जरा भोजन कर दो, पानी पी लो, ये नहीं कर सकते, ये सब विशाल कर। फिर गोपी उठे हैं, ये 10 महीने में पहले तो वो भ्रमर गीत की बात है, गोपी उन्होंने कृष्ण के लिए अनाप समाप्त शब्दों का प्रयोग किया, झूठे चोर लड़ा जो कुछ करना था वो सकता है। उद्धव जी ने कहा करना इसके लिए ही कह रहे हैं, जो भी लोग ध्यान करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, सप्तम त्रिसत्यम सप्तस्योनि नीतं च सत्ये सत्तम सत्यात्म सत्यम प्रहुष। इतना सत्य सत्य कहते हैं और गोपियां झूठ लबार चाटुकार क्या क्या करते हैं, और वो जो कह रहे हैं इसको कोई गलती नहीं काट सकता। उद्धव जी वहीं पर खड़े रहे, तनिक भी ननू नचु नहीं कहा, नच नच मन ये बात आप लोगों का ठीक नहीं, ये नहीं कहे, बस सुनते गए बस। 10 ये तो एक दिन की बात था, जब कह रहे हैं भ्रमत आ रहा है मानो तुमको इतनी गाली गलौज कर रही हो, चलिए तुम लोगों के लिए बड़ा प्रेम रखते हैं, बहुत प्रेमी तुम लोगों के बिना उन्होंने मना किया है या कहने के लिए, ये वो तो तुम लोगों के दिन रात तुम लोगों की चिंता करते हो, ऐसा तो विश्व ब्रह्मांड में प्रेम का फल देने वाला नहीं।
और तुम उनको इतना करें
यहां मत ये सब बातें कहा।
ये मथुरा वाली को सुना, मथुरा वाली को सुना, नहीं यहां मत सुना,
तुम्हारी यहां पर वो क्या नहीं दिखेगी, तुम्हारा यहां पर वो दाल नहीं गलेगी, तुम्हारी
ये
दाल नहीं गलेगी, मथुरा का पानी अच्छा है, खारा है, दाल नहीं गलती,
बोली दाल ही पानी,
तुम्हारी दाल नहीं गई, तुम मथुरा वाला है, मथुरा में लौट जाओ, वहां के लोगों को सुनाना, यहां पर ये सब बातें मत कहना। तो तुम ये कह रही हो कि परम पति पता लक्ष्मी जी, अरे उनका गुणगान करती हैं और उनके चरणों को पुलोटा करती हैं, और तुम उन ऐसे लोगों के लिए जो आराध्य हैं उनको तुम ऐसा कह रही हो, अरे वो भोली भाली हैं लक्ष्मी, सर्व सिद्धि, उनको बातों में बहला लेते हैं, हम ऐसे चारकारी से उनकी बातों को हम लोग विश्वास नहीं करते, यदि कुछ दिन और हो जाए ना तो वो अपने आप समझ करके समझी लीजिए ये कैसे, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और की तो बात क्या, मृगरी कपिंद्रम दिव्यधे युद्ध धर्मा स्त्रमित विरूप स्त्री जी का कामयान
बलिगुनी बलिमत्ता
बलिमपि बलिमत्तावेश्य अध्यान सवतजा तदा मशित सखई दुष्पद। अपने प्रभु की बात सुनना चाहता है तू, कैसे मैं बतलाऊं, तुम्हारी भी श्रद्धा गड़बड़ हो जाएगी, न सुनो तो अच्छा है तुम लौट जाओ। के लिए यदि इतनी ही बात है और सब समय उन्हीं को तुम लोग दोष देती है तो फिर उनकी चर्चा क्यों करो, उनकी चर्चा तो छोड़ना नहीं अच्छा। दूसरी बात है मन्यता मान्य वार्ता, मन्यता मान्य वार्ता है दूसरी बात है, ये बात तो उनके संबंध में बात करता तो यही तो बात है कि हम छोड़ नहीं सकते, प्राण छोड़ देंगे किंतु उनकी बातों को नहीं छोड़ते। जब तुम्हारे प्रभु की बातें बनता है वो कहते हैं मेरा जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम और कोई नहीं, ये उन्हीं की बात नहीं, काले जितने हैं जीव जंतु, जीव जंतु भगवान के अवतार इत्यादि जितने काले हैं वो विश्वसनीय नहीं, साधारण राम भी एक कोई काला व्यक्ति था, वो भी अपने को तुम्हारे जैसा ही भगवान था, और सब में समदर्शी परम धार्मिक है, एक पत्नी प्रतिधारी किसी का अनिष्ट नहीं करने वाले, किंतु जब दंडकारण्य में गए अपने पत्नी और भाई के साथ, पते जी मैं तो स्त्री जीता, मैं स्त्री जीत हूं और है कैसे असल में कामी अपने स्त्री के वशीभूत, अच्छा बुरा ये नहीं विचार करने का उनको, यहां काले बारे जैसा उसने कह दिया बस पैसा, हिरण को पीछे चलो तो चलो, अरे बाली ने उनका क्या बिगाड़ा, सुग्रीव और बाली दो भाई दोनों में लड़ाई हो गई, तुमको समदर्शी दोनों को बराबर रहना चाहिए, दोनों में सुलह करवा दे, ये करना चाहिए, तुम भी कामी वो भी कामी मिल गया सुग्रीव, वो भी अपनी स्त्री से दुखी, तुम भी अपनी स्त्री के दुख से दुखी, दोनों दुखी मिल गए, हम मिल करके षड्यंत्र रचा, हम तुम्हारे शत्रु को हरा करके तुम्हारी स्त्री को मना दें और हम तुम्हारी तुम जाएंगे, अग्नि की साक्षी रख करके ये प्रतिज्ञा है और छिप करके ना, ऐसे जो ऐसे नहीं ना सुग्रीवों का जल लड़ने जाओ मैं उसे बंद कर दूंगा, सुग्रीव मारपीट खा करके और उल्टी खून की करते हुए जब लौट करके आ गए, प्रभु मैं तो समझता था कि आप सत्यवादी थे, इस तरह से मुझे मरवाया, यदि एक मिनट बात होती तो मैं मर ही गया होता, वो तो मैं किसी प्रकार से भाग करके निकल आया। आपने आपको मरवाने से तो पहले ही हमको न भेजते, ऐसा आपने किया। और अंत में फिर ये ठीक करके एक मान से उसको मारा और बेचारा उसने कहा जैसा है तुम तो बड़े धर्म ध्वजी हो, धर्म की ध्वजा उड़ाते हो, तो ये तो बतलाओ हमें क्यों मारा, हमने तुम्हारा क्या निष्ठ किया था ये बतलाओ। रामचंद्र बतलाएंगे तुम्हारा क्या निष्ठ किया, उनका क्या निष्ठ किया। तो उन्होंने कहा हमारे मित्र का निष्ठ किया, कब से मित्र बना, इसलिए मित्रता हुई, निस्वार्थ रूप में आपकी मित्रता हुई। तो जब कोई उत्तर नहीं आया तब उन्होंने वो बतलाया
कि अनुज
बधु भगनी सुत नारी, विदो कभी तो उनको मैं माना यदि कोई। अभी तो बहुत लोगों ने तो विलो का, ये सुग्रीव जी दोष से मुक्त थे, ये तो पहले ही से तारा जी से प्रीति रखते थे और इसीलिए बाल बिगड़ा उन पर, तो वो दोष तो इन्होंने भी किया। अंत में इधर उधर से सफाई देकर के किसी प्रकार से, अरे बानर का मांस तो खाते भी नहीं, और उसको उसने मारा, कोई भी बहरिया तक नहीं उनको मारा, कोई हिंदू नाम का कोई व्यक्ति वो नहीं मारा, अभी उन्होंने मारा बानर का तो नर वैसा ही पाप लगता। अच्छा नाव छोड़ दिया, एक पत्नी बताई सुपना सुपनता सब सीधी लड़की छंद नहीं, उसने आकर के स्वयं निवेदन किया बड़े सुंदर मैं भी सुंदरी, मैंने अपना चित्त तुमको दे दिया, अब विवाह कैसे हम लोग, ये सीधा सा प्रस्ताव उसने क्या छल पड़ता। अरे आप वैसे ही कह देते कि हमारी मैं विवाहित हूं और एक पत्नी प्रतिभागी हूं, इसलिए तुमसे विवाह नहीं कर छल छत बनाया कैसे अपने भाई को दिखला दीजिए इससे शादी करो, इसकी शादी नहीं। अच्छा ये झूठ बोलने की क्या है, उसने कह दिया जैसे भाई मैं तो इनका दास हूं, जो दो चार दस बीस रख सकते हैं
स्त्री शादी करने राजा ने बनी हम
लोग के पास मुझे बेचा, फिर वहां से उन्होंने लौटा दिया, फिर उनके पास में ऐसे दो चार बार दस बार घुमाया, तो फिर अंत में राम ने कहा जैसे देखो इसे खिलवाड़ मत करो, ना तो काम दोनों साफ कर दो बस, तलवार पहनी तलवार बस ना तो काम साफ कर दिए। अच्छा उसको मार करके भगा देते, ऐसे ही भगा देते, कहते कि भाई यहां जोड़ देते मुझे जरूरत नहीं है, तो बेचारी मान जाती, किंतु उसको इधर से उधर इधर से अपमानित करा सकते। अंत में किस कारण से ना काम काटा ये बतला सकते हैं, भ्रमण से पूछ रहे हैं दूध से किसने ना काम वो कहते हैं। अब इसका उत्तर क्या दे, अरे स्त्रियों का सहज है जहां रूप देखती हैं गुण देखती हैं वहां पर हो जाती है, तो मोहित हो गए, ये दोस्त आप ही का है ना, इतना सुंदर रूप लेकर के और उसने भी यहां पर अपने केसों को बांध दिया और धनुष बाण ले करके चल रहे, कितना सुंदर है, और कोई मोहित हो जाए तो उसका दोष क्या है, दोष तो आपका है, इस पर भी आपने ना काम उसके काट लिए क्यों, तू बतला सकता है उसको धर्म को बतला सकता है क्यों, तो वो तो निरुत्तर वो तो भन भन करता कर रहा है। अच्छा मैं समझ गया,
तेरे पास में उस पर सोने मैं बतला देता हूं, इसलिए कि अब भविष्य में कोई इसे शादी इसका जीवन सारा जीवन चौपट कर दिया, यदि ना काम होता ना तो दूसरे से शादी कर तो अब कोई भी नहीं शादी। और उनका गुणगान काले बालों का बामन होकर के स्वर्ग देवता के रूप में बामन के बड़ा सुंदर दिन गांव है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बावन अंगू के बन गए, छोटे से बच्चे बन गए और मालमता जी बहुत सरल सीधा मिष्ट मधुर भाषी है और ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी बन गया, ब्राह्मण का प्रतिष्ठा और बलि महाराज जी के सामने चुपचाप बैठ गया। मन महाधैर्यशाली और सहिष्णु है, इसको कोई चीज की जरूरत नहीं है, बस राम राम कह रहे हैं जैसे भजन कर। जब सब लोग लेकर के चले गए तो भी बैठा रहा स्थान पर, बलि महाराज हाथ जोड़कर बोली महाराज आप तो बड़ी तेजस्वी बालक हैं, साधारण नहीं मालूम होते, कुछ जरूरत है? उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा जी जरूरत है तो बतला देता, जरूरत तो जरूरत नहीं पता, आपके प्रतितामह जी जो थे बड़े धर्मात्मा थे, आपके पिताजी बड़े धर्मात्मा थे, प्रहलाद महाराज जी का नाम कौन नहीं जानता, उनसे यदि कुछ भी मांग लिया उनका प्राण भी तो दे देते और कभी अपनी बात से मुकरते नहीं थे। अच्छा इतना लंबा चौड़ा प्रबंध कहने की क्या जरूरत, तुम सीधे से कह देते जी हमको इसकी जरूरत नहीं हो, अच्छी तरह से लंबा चौड़ा ये फूल बांध करके। अरे उन्होंने कहा जाते तो कुछ मांगिए क्या चाहते हैं, तब बोले जैसे अच्छा आप संकल्प तो कर लीजिए जो मैं जो दूध जो कह दूंगा वो दे दूंगा, हमारे वचन पर विश्वास नहीं होता है, वचन का ये तो रीति है शास्त्रों की, ये देना होता है तो पहले संकल्प लेते हैं, आप संकल्प कर दीजिए कोई काम किसी के यहां जाएंगे कहेंगे जैसे अच्छा पहले तुम गंगा की शपथ कहो, जैसे इस तरह से जो चलाक चतुर होते हैं शरीर लोग वो इस तरह से बांध देते हैं अपने काम पर, ऐसे ही उन्होंने भाग भाग सब बांध मुंह करके रेडी करके अंत में कहा मुझे तीन पग की जरूरत है, इतने में शुक्राचार्य आ गए, बोले बेचारे ये खबरदार मत देना सर्वनाश हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अपनी बात याद रखना है, तुमने संकल्प किया है, तुमने संकल्प कर लिया है और यदि तुम नहीं अब देगा तो फिर तुम हो गए तो उसका फल पाप होगा, जिसे ये भूल न जाए। अंत में उनसे ठीक करा लिए जहां संकल्प कर दिया है और मांग लिया और उसको लेना चाहिए था, जिससे वर्ण है जिस शरीर से उसी से मापना चाहिए, मापने के समय में वो एकदम अपना इतना शरीर बढ़ाया जो ब्रह्मांड तक पहुंच गया लंबा और उसके डग हो गए जो पृथ्वी को एक डग नहीं, बोले दूसरा डग कहां मापू, उसे पताल पताल सब कुछ हो, तीसरे डग के लिए कोई स्थान नहीं, ताकि अब तीसरा डग कहां रखू, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा पकड़ाया होगा, बतलाओ कहां रखू। उनकी पत्नी और लड़कियों ने कहा, लड़की थी ना, कहने अरे ये तुम्हारा छली है, तुम जिस पैर से मांगा था जिस शरीर से उससे मापो, हम इसे नहीं देंगे, बलि महाराज यहां से जाने दे बड़े भीत ले लिया सब और अंत में उनको बांध करके नाथ फास्ते भी कर दिया, उपमा दिया ये कैसे कैसा उन्होंने किया, एक काले पक्षी के उपमा था, किससे
कौआ
कौआ कौआ कैसा है उसी का, और वैसे ही भूत होगा मनुष्य में नापित भूत
नापितम दुष्टम
और पक्षियों में
पक्षी नाम बायस तथा
बायस गुप्त में बुद्धिमान नहीं गुप्त होते उस सबको ठगने की इस तरह है। तो वो क्या करता है, यदि कोई टोकरी पर ले करके जा रहा हो माल कुआ इत्यादि पेड़ा लगी तो ऊपर से उड़ करके आएगा खाएगा, और जो ले जा रहा है उसको ठोकरों से मारता है, चोंच से मारता है, जिसका खाता है जिस पत्ते में खाता है उसी को छेद कर रहा है। तो ये जाति ही ऐसी है। उद्धव जी कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, कोई उत्तर, उनका अगाध प्रेम थे। इन्होंने कहा भाई उसका तुम क्यों चर्चा करते हो, छोड़ो उसकी चर्चा। तब वो कहा उसके बाद वाला अनुचरित जद लीला
जदनुचरित
लीला विधुतम धर्मा विनष्टा शपथ गृह कुटुंबम दिनमत सिज्य दीन बहु विहंगाधिक चर्चा कर। अरे बहवह तू काटा जी उनकी चर्चा मत कर, हम उनके पेड़ में पड़ गए, अब तो चाहने पर भी उनकी चर्चा को हम छोड़ नहीं सकते, किंतु भविष्य में कोई चर्चा उनकी न करे और उनके जाल में न पड़े इसके लिए हम लोग सावधानी के लिए कर रहे हैं। बाबा यो विहंगा भिक्षु चर्चा है, जिनके माता पिता ने बड़े आदर के साथ में पाला पोषण, जिन चिड़ियाओं चिड़िया मैंने जिन का लड़के और लड़की बड़े प्रेम के साथ में पाला पोषण करे और बड़े अच्छी तरह से उनको किसी प्रकार से वो नारद जी जैसे लोग या और लोग मिले भागवत की पोथी दबाकर बिना पैसे गांव-गांव में सभाएं करके और उसकी लीला कथाएं कहते और उसको सुन करके जिनके पर भी नहीं निकले हैं अभी आंखें भी ठीक से नहीं निकले, ऐसे जो छोटे छोटे नादान शिशु शावक हैं लड़कियां चाहे लड़के वो बेचारे सुनते हैं और उनके कानों में चर्चा करती माता पिता को रोते हुए छोड़ करके घर में सबको और लाते हुए छोड़ करके बस भिक्षु चर्चा है। वृंदावन में आकर के एक एक रोटी माधुरी मांग करके पेड़ों के नीचे रह गए, आकाश के नीचे रह करके कहां कहां कैसे दुख कर सके, जमुना के किनारे इधर एक दो नहीं हजार भिक्षु चर्चा है। हमारी यही दशा जब अनुचरित लीला कर्ण यूसुफ एक बार भी उनकी लीला कथाएं या उनका नाम कानून में दे दिया तो हमारी दशा ऐसे 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 सुंदर सुंदर भावों को देख करके उनकी प्रेम की लहरियां देख करके उसमें डूब और ऊपर आ सुन रहे हैं दूर से भीतर में प्रवेश नहीं कर। तब उन्होंने उनकी वंदना आरंभ की। हमने देखा सुना है कि 10 महीने जब भी रहे तो कहीं नंदगांव पहुंचे हों, उद्धव क्यारी में उनके साथ में वार्तालाप हुई, कभी उद्धव कुंड देखा है राधा कुंड के समीप में, उद्धव कुंड नहीं गए वहां पर दूसरा कोई पुरुष जा ही नहीं सकता, हम लोग कैसे जाते हैं, हम लोग को छोड़ गए, हम लोग तो उसमें प्रवेश नहीं कर सकते माया के ऊपर में रहते, इसलिए न तो राधा कुंड और श्याम कुंड का दर्शन न उनके स्पर्श और कुछ एक रेणु कणा का भी स्पर्श होना बड़ा भारी करती। उद्धव जी कहते हैं ये एक रेणु के लिए वंदना करेंगे, वही श्लोक है वंदे नंद प्रजेश पाद रेणु अभी उसी के लिए अभी मुख बंद कर रहा है। उद्धव जी को क्यों लोभ हुआ एक चरण रेणु, तो वो नंद गांव में गए और वहां पर ये भ्रमर गीत इत्यादि श्रवण किया,
वो तो सोई हुई है, उद्धव जी को नहीं देख रही, आंखों से पानी की धारा बह रही है, अश्रुओं की धारा, वो मरमर करके जी रही है और जीते जीते होकर के मर रही है। एक सोनी सी पुतली कमल के फूलों पर सेज पर लेटी थी, मरी हुई की जीवत ये पता नहीं कि अश्रु करके बिचार। वहां के बाद में वहां पर राधा कुंड में आए, वहां की सब गोपियां बातचीत में करते करते रोते 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 कहने लगे, तो ये पाशनी में कुसुम सरोवर कितना हमें धोखा दिया, यहां पर आकर के अपने हाथों से फूल के गजरे बनाते और हमें पहना देते और हम लोग भी लेकर के उनको पहनाते, वो स्थान कितनी प्रेम की बातें यहां। ये राधा कुंड देख रहे हैं, दूर से देखो सूर्य पूजा की कितनी बातें और वहां मिलन की बात है, वहां पर सब गोपियों की अलग अलग सूर्यों की बात है और वहां पर जो बीती हुई बातें थी लीला कथाओं का उनकी मुश्किल कम में बहुत बनने का। देखो जब यहीं पर हम लोग लुक लुकी खेल खेलते कृष्ण भी डूब जाते और डूब करके बहुत दूर हम खड़ी हैं पानी में, वहां आकर के हमारे पैरों को पकड़ दे, हम समझ जाते जैसे वो फिर वहां से वहां पर पहुंच जाते, ऐसी ही अपनी गाय यहां पर ये फिसली नहीं है, काम में बने फिसलनी सीला, यहां पर हम सब मिलकर के खेलते ऊपर से फिसलते, ये सब ऊंचा गांव में वो देखा सखी गिरी पर्वत में फिसलनी सिला और या अलका पहाड़ी कहते हैं कृष्ण राधा जी के चरणों का महाव की ललिता जी का लगा हुआ है, उन लीलाओं का कथा का स्मरण दिला करके विलाप करती थी, पूरा वहीं पर श्रीमद भागवत वहां पर पढ़ा दिया उनको, उद्धव को कौन पढ़ा रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी नहीं, देखो ये गोपियां पढ़ाई जो जो लीलाएं थी अपनी बीती हुई लीलाओं को और उन स्थल पर ले जाकर के कोई विशेष रूप से कहे ये मेरी मातृभूमि यही पर मैं जन्मा था इस घर में, मैं कहूं नहीं जाकर के ले जाकर हमारे गुरु जी का ये हमारा यहाँ पर जन्म था, यहाँ पर ये समय खेल खेला था, यहाँ पर मैं पढ़ता था, ये है। अभी स्वामी जी के सब शिष्य आते हैं, जब कहा जाता है कि यहीं पर इस बीच में उन्होंने संन्यास और उस घर में रहते थे, यहाँ पर कीर्तन करते थे, पाठ करते थे, श्रद्धा से चरण चुकाते हैं ना सब, कृष्ण ने यहीं पर बैठा करके हमारा घुंगू बांधा श्रृंगार पर दिखलाया होगा, यहाँ पर हमारी बेड़ी बूथी और श्रृंगार किया, ये सेवा कुंज है, सेवा कुंज में क्या हुआ, कृष्ण ने गोपियों की सेवा की चरण में, ये समझते हमने तो जो सुना था आज तक भगवत भक्ति की बातें, वो भगवान की सर्विस का नाम, सेवा का नाम है भक्ति, उत्तम भक्ति में कहा भी गया है कि अन्नाभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनाश्रितम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम, ये कहा गया है। हम देखते हैं सब विपरीत विपरीत है कि नहीं, जो उद्धव जी को बतलाया गोपियों ने वो तो सब देखा कि कृष्ण ही गोपियों की सेवा सब जगह करें, उनके वशीभूत होकर के करें, भक्ति में कहा गया अन्न अभिलाष को छोड़कर ज्ञान कर्म योग तपस्या व्रत होम स्वाध्याय सोचकर छोड़कर अनन्य रूप से तन मन वचन और भाव के द्वारा सब समय कृष्ण के अनुशीलन का नाम, अनुशीलन नाम है सेवा, सेवा का नाम भक्ति है, उत्तम हम देख रहे हैं कि यहां पर गोपियां क्या सेवा कर रही है, कृष्ण ही देख रहे हैं यहां पर नंद बाबा जसोदा सखा और सखियों सबकी यही सेवा कर रही है, अरे उनकी गायों की सेवा कर रहा है कृष्ण, करें नंद बाबा की 9 लाख गायों की सेवा करता है, उनको पानी पिलाते हैं निरी निरी कहकर। जो ब्रह्मा ब्राह्मणों के पवित्र ब्राह्मण जो हैं मुनि ऋषि, उनके सुमरस को प्रत्याग करते हैं, उनकी साम गीति को, साम वेद ऋग्वेद यजुर्वेद की स्तुतियों को कृष्ण नहीं सुनते, बधिर रहते हैं, उनका कान बारे रहते हैं, सुन नहीं पाते। और गोपियों के घर में या क्या करते हैं, तिरी तिरी निरी निरी गायों को कह रहे हैं, गायों के बछड़े के पैर थक जाते हैं तो क्या करते हैं, उठा करके गोदी में लेकर के चलते हैं। कभी अंकुर खाते समय एक बछड़ी थी और उसको लग गया घास और उसमें से रक्त प्रवाहित होने, कृष्ण ने अपना पीताम्बर चीर करके उसको, वही जब गायें बड़ी हो गई ना बछड़ी, तो कृष्ण ने गैया क्यों चराना आरंभ किया,
बछड़े के साथ जाती नहीं।
अब वो जो बछड़ी है ये थोड़ी बड़ी हो गई है और वो कृष्ण यदि बछड़े चराते हैं छोटे छोटे तो वो बछड़ियां चरेंगी नहीं, क्योंकि बड़ी हो गई है ना। अब वो तो कृष्ण के साथ में अभ्यस्त हो गई है जाने के लिए, इसलिए दूसरों के साथ में जा नहीं सकती, इसलिए कृष्ण उन बड़ी जो गैया हो गई है जिनके बछड़े भी अब होने लगे हैं कि बछड़े, उनको लेकर के जा रहे हैं, उनको चरा रहे हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके पैर दबाते हैं बछड़ों में, और कितनी सेवा का हम करते हैं तो उन गोप और गोपियों की तो बात ही है। हे विपरी, ये प्रेम में ऐसा ही होता है। तो यहां पर तो हम देख सकते हैं, इसलिए तब उन्होंने कहा अहो भाग्यम, अहो भाग्यम नंद गोप प्रजाम जन्मे परम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म सनातन हो करके आज कहा ब्रज के जितने भी ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी नहीं ब्रज के जो भी जीव जंतु जो कुछ हैं सब कृष्ण के मित्र हैं, बंधु हैं, सखा हैं, सब इनके प्यारे मित्र हैं। जन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन, ये सब तब उनकी महिमा देख करके आशा मोह श्लोक है और उसके बाद में तब में कृष्ण श्लोक है। जब अनुभव उनको हुआ इस बात और मैं उस प्रेम बेला की बेला भूमि में भी मैं नहीं उपस्थित हो सकता, बेला भूमि कहते हैं तत्स्थान है, उसकी एक कण को भी मैं स्पर्श नहीं कर सकता, तब फिर उन्होंने ये भाव उठाया कि मैं गोपियों में से कोई एक को करके रहूं और उनकी सेवा को नहीं, भाव को छोड़ दिया। धूली को भी स्पर्श कर सकूंगा इसकी भी भावना छोड़ दी, तब ये कहते बंदे मैं दूर से साष्टांग प्रणाम किया, मैं स्पर्श नहीं कर सकता, वृंदावन की धूली है हम लोग स्पर्श कर सकते हैं कि नहीं, जरा विचार करके देखो तो वृंदावन की धूली का नाम क्या है, प्रेम, एक एक प्रेम की मूर्ति और सब कुछ दे सकती है, हम लोग उसको स्पर्श कर सकते हैं नहीं कर सकते। जब उद्धव जी कह रहे हैं मैं नहीं स्पर्श कर सकता, उठा करके ले ले सकते थे, लगा लेते, देखा जाए ये चिन्मय पदार्थ ये नहीं, तब दूर से उन्होंने बंदे नंद ब्रज स्त्रीला पागरेणुम अभिघ्न सा, निरंतर मैं उनकी धूली की वंदना करता हूं, अपने वस्त्र पर नहीं रह सकता, शरीर में नहीं लगा सकता, जाता हरि को थ्रोत गीतम सुना, जिनके मुख से निकली हुई जो हरि कथाएं हैं वो विश्व ब्रह्मांड को भुवन त्रय को जड़लोक जीवलोक और गोलोक प्रधान सबको ये पवित्र करते हैं, अथवा जासंग हरि को होती है, जासंग माने जिनके संबंध वाली जो कथाएं हैं, संबंधित कथाएं हैं, जैसे अभी हम लोग इन कथाओं के श्रवण और बोलने से ही कीर्तन से ही वो भाव आएगा, इसलिए विश्व ब्रह्मांड को पारण करने वाले, इसलिए सनातन गोस्वामी ने उनकी अवतारणा कर करके हम लोगों को सुनाया था। या सुखदेव गोस्वामी ने व्यास जी ने समझाया और हम लोगों को दिया, व्यक्ति रूप में तो हम लोग उसको पा नहीं सकते। इसलिए हरि कथो गीत पुनः मंत्र कैसे, इसको सनातन गोस्वामी जी बतला रहे हैं इस प्रकार से। एवं तासाम महात्मा परम प्रत्यय, उसके महात्मा को 10 महीने के बाद में अनुभव किया, गोपियों से तरह तरह की बातें। अंतिम बात यही हुई थी, गाड़ी छकराया वहां से अब आए रथ में, अब जाने के समय में का जवाब मैं रथ में नहीं जाऊंगा, रथ को छोड़ दिया। नंद बाबा एक शकट ले आए और उसमें दूध दही घी मक्खन और उसे बनी हुई चीजें, एक एक गोपी एक एक चीज दे रही है, ये कृष्ण को देना, ये कृष्ण को देना, ये कृष्ण को देना, ये आदि पुत्र को देना, ये बकारी को देना, ये अघारी को देना, क्योंकि नाम नहीं ले सकते हैं। यशोदा जी को उसे दिया वो नाम ले लें, नंद बाबा नाम ले लें और गोप लोग नाम ले लें, किंतु गोपियां नाम नहीं लेंगे कुछ। इसलिए अघारी बकारी ये सब करें, आद्य पुत्र इत्यादि ले लें। दाऊ जी के भैया का भैया को छोटे भैया के इस तरह से उनको दे, उद्धव जी का है जैसे ये तो सब आप लोगों ने दिया, उनको कुछ संदेश चाहिए जैसे वो संदेश दिया था उन्होंने, ऐसे कुछ संदेश चाहिए, वो संदेश दीजिए मैं उनको दूंगा। तो गोपियां कुछ नहीं बोलते, उद्धव जी ने कहा मैं ये दे दू कह दू, जो गोपियों ने कहा है ये उनके दिलों में मैं बैठ परिश्रम कर और उनके आपके दिलों में बड़ी पर्व एक बार वृंदावन है ये कह दू कहना और सब कुछ कहना, किंतु इस चीज को मत कहना। हम बड़ी निष्ठुर हैं, लोहे के समान वज्र के समान हम रहे, आपने कितनी बार कहा कि कृष्ण तुम्हारे दिल में बड़े दुखी हैं, किंतु हम मत नहीं रहे सुन लिया, किंतु कृष्ण यदि सुन लेंगे गोपियां हमारे दिल में तड़प रहा रही हैं तो तब हिम्मत जाए, मक्खन से भी कोमल उठता है, इसलिए उनको खबरदार मत कह। हाँ कहूंगा, कैसे कहना, एक दिन कुछ कहना, एक गोपी रो रही आपको दया है, उस दिन बाद तीसरे दिन कहना, दूसरे दिन कहना और भी गोपियां कुछ की रो रही, तीसरे दिन फिर कहना, धीरे धीरे कहना, क्यों एक पुराना कपड़ा है खूब पुराना कपड़ा और पानी से भीग गया तो इतना जोर से मत निचोड़ो नहीं तो फट जाए, इसलिए धीरे धीरे इसको निचोड़ो या ऐसे ही रख दो पानी टपक करके सूख जाएगा, और यदि निचोड़ा पुराना कपड़ा तो फट जाए। तो हमारा फ्रेंड भी ऐसा है बड़ा कोमल, तो कहीं जोर से करेगा और वहां पर हमारे प्राण आपके प्राण निकल जाएंगे, हम भी मरे वो भी मरे तो इसलिए मत ने कहा तमाम सूचा प्रेम दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। तब फिर वो वहां पर बात होकर के बंदे स्त्री नाम माने यहां तो यशोदा भी ये तो स्त्री है महिला है और भी तो है, उनके उद्देश्य से कह रहे हैं मैं उनके भी उद्देश्य ये कौर कह रहे हैं, कृष्ण की जो प्रियाएं हैं उनके लिए ये कह रहे हैं। परम प्रति के साथ में ब्रज की रमणियों का महात्म गोपियों का महात्म जब उन्होंने देखा, देख करके सुस्वस्य कीर्तन करने लगे और उनके चारों तरफ में बस दंडवत होकर के दूर से प्रणाम, निकट से नहीं करने थे गोपियां नहीं करने देनी पड़ा नहीं करने दे, इसलिए दूर से वो प्रणाम कर कब अलक्षित रूप से, जब गोपियां नहीं है तब गोपियों की चरण की धूल की वंदना कर रहे हैं। एक चीज भूल करना, आपके दिन लक्ष्य करके साष्टांग प्रणाम करते हुए कारण बंदे नंद ब्रज स्त्री का, यहां पर एक धूलि की वंदना कर रहे हैं तो वो एक धूलि किसकी चरण धूलि होगी? यदि हजार होती तो सब गोपियों को ले लिया जाता, जो गोपियों की चरण की धूलि उड़ी है और उसमें किसी की वंदना। यहां पर जब एक कर रहे हैं तो उसका उनको लोभ भी है, जो सबसे प्रधान है, जिसको कृष्ण लेकर के अंतर ध्यान हो गए थे श्रृंगारवट में, जिसका श्रृंगार किया, और जो गोपी दीरा रस में पागल होकर भौने से बातचीत कर रही है भ्रमण की टीम के लिए, जिसके लिए कृष्ण ने मूलतः अपने संदेश भेजे थे, वो गोपी वो कौन है? श्रीमती। नाम नहीं लिया, काश्यप कहा, किंतु काश्य का अर्थ यहां पर यही ले रहा, वो एक गोपी श्रीमती राधिका जी के चरण की धूलि की वंदना कर। इसी श्लोक में ब्रजस्त्रियों के अपरोक्ष रूप में अर्थात वहां पर कोई गोपी नहीं है और वहीं पर साष्टांग प्रणाम करके ब्रजभूमि में उस चरण धूलि के लिए वंदना कर, मन ही मन में ये राधिका जी की चरण एक धूलि करना है, ऐसी की नहीं करना। इसलिए वंदना करें कि परम गौरव के साथ में जहां पर माधुर्य भाव रहेगा वहां पर वंदना फंदना कुछ नहीं होगी। उद्धव में सब समय वंदना का भाव है, गौरव के भाव, इसलिए ब्रज की लीला में प्रवेश नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं सुना मधुमंगल ने कृष्ण को प्रणाम किया और कृष्ण ने आशीर्वाद किया। ब्रज में एक नौकर चाकर भी कृष्ण को प्रणाम नहीं करता, जब देखता है कृष्ण को नौकर एक नंद बाबा का तो झट क्या करता है, कृष्ण को गोदी में उठा करके बस चुम्बन कर लेता है और सिर पर हाथ फेर देता है, बस यही उसका प्रणाम, और सखा लोग गले से मिल जाते हैं और सखियों से मिलने में बस आंखों के द्वारा ही उनका अर्चन और पूजन और परस्पर गुणगान करना सब कुछ हो जाता है। इसलिए वहां पर ये प्रणाम प्रणाम की जो बातें हैं ऐसा जिनकी बातें वहां पर नहीं है, किंतु उद्धव जी मथुरा आया है यहां, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, जहां जो जब मथुरा जाएगा ना तो अपना स्वभाव कैसे छोड़ेगा, उद्धव जी है मथुरा, ब्रज में आने पर भी अपने भाव को नहीं छोड़ सकता, इसलिए वंदना कर रहे हैं महान समझ करके। अपनी समझ सदा के लिए प्रणाम कर रहे हैं। अब यहां पर करें वंदे अपिक्न सह नंद ब्रज स्त्री ना आज जासां हरि कथो, जासां हरि कथो पुनाति अभिक्ष न सह, सब समय पुनाति सब समय पवित्र करता है, भूत भविष्यत और वर्तमान तीनों काल, और तीनों काल में ही ये वंदना करता है। जिनकी हरि कथा संबंधी उच्च गान जिन गोपियों की या गोपियों के संबंधी गान, गोपियों की महिमा, जैसे हमारी गोस्वामी लोगों ने किया है, त्रिभुवन को ऊर्ध अध और मध्यस्थित लोक सपन, ऊर्ध मध्य और अध इसमें सभी आ गया, उधर में गोलोक वृंदावन भी आ गया, वैकुंठ भी आ गया और जितने लोग हैं सब आ गया, पृथ्वी लोक भी आ गया, ऊर्ध अध और मध्यस्थित लोक पवित्र हो जाए। इसके अनुसार सुखदेव गोस्वामी ने यह कहा
ब्रजंगनागण अरविंद लोचन श्री कृष्ण के उद्देश्य से जो गान करती है, जैसे जय पितेधिकं जन्मना ब्रज स्वरयते इंदिरा शश्वत दैत दीशतां दिक्षु सावका त्वयि धृता सह त्वं विचिन्वसि सर्वकथामृतं तर्कजीवनं कपिरीडितं कल्मषाकं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जना। ये सब जो गोपियों की और गोपी संबंधी कथाएं ये सब है। उद्धव जी ने गोपियों के लिए जो कहा है आशाम हो चरण रेण, फिर वो उसका पहले का वो
कीमा स्त्रिया
वृंदावनम गोपितमित कृति इत्यादि जो श्लोक है गोपियों के संबंधी, गोपियों की महिमा है। ये तीनों लोगों को पवित्र करने वाले हैं, कृष्ण भक्ति और प्रेम देने वाले। अथवा सुखदेव पाद ने भी कहा, सुखदेव गोस्वामी ने जो वर्णन किया, ब्रजंगनागण सवेरे उठ करके दधि मंथन करती हुई सुख सहकाओं को पढ़ा रही है। क्या पढ़ा रही है? गोविंद दामो गर्मा पाठयंतो सुख साड़ी को रख रखा है और गोपियां सवेरे उठी और उनसे पढ़ा रहे पाठ करो, बोलो 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 गोविंद दामो धर्माधवे। इसी तरह से सवेरे सवेरे गोपियां उठ करके दधि मंथन करती हुई और अपने हाथ के चूड़ियों की थनकार और दधि मंथन का शब्द उसमें स्वर में स्वर मिला करके पंचम सूर से और गा रहे हैं गोविंद दामो धर्मा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रतिदिनम सवेरे ये इसको गान कर रही है गोविंद दामो धर्मा देव। लीला सुख जी ने 108 पद्यों की माला रच करके और उसका गान किया है, वो प्रत्येक गोपियों संबंधी। तो इस तरह से कह रहे हैं जैसे गोपी संबंधी कोई भी गान विश्व को पवित्र करने के लिए। दस देखो मैं दधि मंथन करती हुई और गोपियां गोविंद दामोदर इत्यादि उनका नामों का गायन कर रही हैं, उसकी ध्वनि 10 दिशाओं में फैलती है, तरंग मालाओं से 20 सुमृत चारों तरफ में फैल जाती। जैसे हम यहाँ पर कृष्ण शब्द कहा गया ये हवा के तरंग में मिल करके जैसे पानी में एक ढेला डालते हैं तो वो तरंगायित होकर के अंत में उसके किनारे पर जाकर के लगता है। यहाँ पर हमने लगा यदि 2 मील का 4 मील का 10 मील का किनारा है तो वो राउंड पर राउंड होता है, होते 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 उसका एक किनारे पर लग जाता है। समझ रहे हैं? ऐसे ही हवा की तरंगे गोल यहाँ पर चल निकलने से और गोल तरंगे निकल करके विश्व में सर्वत्र ब्रह्मांड एक होता है। विश्व ब्रह्मांड में फैल करके और एकदम सब विश्व का फैल जाता है। यदि संत लोग अभी जो कीर्तन करते हैं ये नहीं हुआ होता, यदि कीर्तन नहीं होता तो न जाने क्या जगत में हो जाता। इनके कीर्तनों की ध्वनि विश्व में चारों तरफ में फैल करके शब्द की जो प्रदूषण हो रहा है, मार काट गाली गलौज और ये गंदी गंदे सब कीर्तन और क्या क्या स्लोगन देखते हैं ना, लोग जाते हैं कैसे कैसे स्लोगन करते चले जाते हैं, इन सब का प्रदूषण होता है। वो कीर्तन के माध्यम से सब कुछ शांत हो जाता है, न तो न जाने आजकल क्या हो जाता, आग लग जाता है। इसलिए संत लोग यहाँ पर घर में भी बैठ करके हरे कृष्ण कर रहे हैं, उसका प्रभाव सब जगह पड़ता है। तो गोपियों के शब्दों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा, इसीलिए पड़ेगा। अथवा जिनके महिमा निबंधन गीत भी हरि कथा गीतों की भांति अत्यंत श्रेष्ठ और जगत पवित्र करने वाली, माँ प्रभु जी कभी कभी कृष्ण कृष्ण के बदले गोपी गोपी कहते थे, तो वहां के पढ़ुआ लोग जो छात्र हैं त्याग करने के अनुसार भी सर के कसरत करने वाले वो नहीं समझ सकते। उन्होंने सोचा जी न जानी ये गोपी गोपी क्या कर रहा है, तो उन्होंने कहा जी गोपी गोपी क्या कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं करते, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो महाप्रभु जी के पास में एक लड़किया थी, लड़किया उठाया और मारने के लिए गड़े वो भागा। अजय आज तो हम भाग रहे हैं किंतु दूसरे दिन देखेंगे हम लोग भी 10-5 आएंगे मिल करके, आपको हम लोग दिखला देंगे। महाप्रभु जी अरे हम कहां आए थे, कब हम निवारण करने के लिए और कब हम पकड़ बैठा, अर्थात हम कल्याण करने के लिए आए और ये सब हमारे विरुद्ध में और अपराध कर रहे हैं, तो जब संन्यास लेना है केवल संन्यास लेकर के। इस तरह से दूसरी तरफ से ये बतला रहे हैं कि भगवान नाम का कीर्तन, भगवान लीला कथाओं का और गोपी संबंधी और गोपी भावों का कीर्तन विश्व ब्रह्मांड को उद्धार कर सकता है, हमारा भी उद्धार कर सकता है, इसलिए वैसा ही कीर्तन होना तो लोग समझते हैं। इसलिए साधकों को भी कीर्तन का सहारा लेकर के यही कीर्तन करते करते अंत में वहां तक पहुंचेंगे, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। वंशा को
Thank you.